महात्मा गांधी के कहे ये शब्द बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड आज भारत और ऑस्ट्रेलिया में व्यवसाय और उद्यम के क्षेत्र में हो रहे बदलावों की रंगभूमि को सही चित्रित करते हैं। 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टार्टअप इंडिया मिशन की बुनियाद रखी। अगर हम बात करें इस मिशन की कुछ खास हाइलाइट्स की तो भारत की सरकार ने 10,000 करोड़ का एक नया फंड, क्रेडिट गारंटी, आयकर में राहत, लगभग 75 स्टार्टअप सपोर्ट हब्स, एक मोबाइल ऐप, एक स्टार्टअप फेस्ट और पेटेंट फाइलिंग की प्रक्रिया को तेज करने की बात कही है। यह तो आर्थिक सहायता हो गई। चलिए आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे गुड़गांव स्थित रॉक योर पेपर के सह संस्थापक नीरज मेहता से। नीरज, आपका SBS के हिंदी कार्यक्रम में स्वागत है।
थैंक यू।
सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि स्टार्टअप क्या है।
स्टार्टअप तो एज सच जो भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस जब आप शुरुआत करते हैं वो आपके लिए एक स्टार्टअप बन जाता है, जहां पर आप ये खोज करते रहते हैं कि अच्छा हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा। आपके पास आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है जो आपको लगता है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास उसका सोल्यूशन है। सो नॉर्मली लोग उसी तरीके से स्टार्टअप शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉन टेक स्टार्टअप की आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो है कि जैसे गुड़गांव की बात, मैं इंडिया की बात करते हैं, जहां पर आजकल इकोनॉमी काफी अच्छा ग्रोथ पे है, लोग हमारे जो मिडिल क्लास और हमारे जैसे हमारे एज वाले लोग काफी फ्लोटिंग है। दिल्ली से बैंगलोर जाते हैं, बैंगलोर से गुड़गांव आते हैं, गुड़गांव से हैदराबाद जाते हैं। सो ऐसे लोग जो जिनकी अभी या तो नई नई शादी हुई है या शादी नहीं हुई है, 30-35 के एज के आसपास में है, ऐसे लोग बहुत फ्लोटिंग है, एक जगह से दूसरी जगह पे जॉब करने जाते हैं। अब ऐसे लोगों के पास खाने का प्रॉब्लम होता है, पीजी में रहते हैं या कहीं पे रेंट पे लेकर के घर रह रहे होते हैं। तो ऐसे जगहों पे जैसे दिल्ली है या गुड़गांव है या हैदराबाद है, ऐसे ऐसे जगहों पे काफी सारे स्टार्टअप हैं जो फूड केटर करते हैं आजकल। ठीक है, आपके पास खाना नहीं है, हम आपको होम कुक्ड फूड प्रोवाइड करेंगे, हम आपको देंगे। तो वो एक स्टार्टअप हो गया। एक प्रॉब्लम है जो है कि हम खाना हमारे पास ठीक से नहीं आता है, हमारे पास घर का खाना नहीं होता है, तो कुछ लोग शुरू कर देते हैं कि ठीक है खाना नहीं आता है तो खाना हम आपको देंगे, तो वो एक स्टार्टअप हो गया।
हमें बताएं कि आजकल भारत में ट्रेंडिंग क्या है स्टार्टअप्स में, क्या चीज इन है स्टार्टअप्स में।
इनकी बात बोले तो देखिए, अगर हम इंडिया जैसे देश की बात करें, भारत जैसे देश की बात करें, यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ पे है। यहाँ पर फूड टेक काफी ट्रेंडिंग है, ई कॉमर्स। आप जैसे देखें जितने भी बड़े बड़े फंडिंग जिन स्टार्टअप को हुए हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील है, ये सारे के सारे जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा फूड टेक काफी बड़ा बिजनेस है इंडिया में। ऑब्वियसली भारत और खाने का तो रिश्ता बहुत पुराना है, तो यहाँ पर फूड टेक वाले जितने भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो आप टाइनी आउल ले लीजिए, फूड पैंडा ले लीजिए, इन लोगों को भी काफी सारा फंडिंग मिला है और काफी अच्छा ग्रोथ पे हैं ये लोग। हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये बहुत ही बड़ा, एक्चुअली हेल्थ केयर और एजुकेशन ये दोनों एक इंडिया में एक समस्या भी है, जहां पर स्कूल्स तो हैं लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले लोग नहीं है, लोग जो शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं वो खुद उतने क्वालिफाइड होते नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे काफी सारे एजुकेशन स्टार्टअप्स हैं जो इन सब चीजों का सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, जो लोग ऐप बेस्ड चीजें बना रहे हैं, यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूशंस, ऑनलाइन ट्यूशंस दे रहे हैं, तो वो एक है। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा मेजर ट्रेंडिंग है इंडिया में, प्राइमरी हेल्थ केयर, काफी सारे लोग सोशल इनोवेशंस में जा रहे हैं। तो अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर ई कॉमर्स एक बड़ा ट्रेंडिंग है, हेल्थ केयर ट्रेंडिंग है, फूड टेक ट्रेंडिंग है, और ऑफकोर्स एजुकेशन जो है वो तो है ही, भविष्य भी है इन लोगों का आगे।
नीरज, आपने बात की एजुकेशन स्कूल की, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने यहाँ के स्कूलों में बच्चों के लिए इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। ऐसा ही कुछ लगता है भारत के प्रधानमंत्री ने भी 5,00,000 स्कूलों में शुरू करने का सोच लिया है। आपको लगता है कि कैच देम यंग से बच्चों को और स्टार्टअप मिशन को फायदा होगा?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप ये देखें कि हम किस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या रोबोटिक्स है, ये काफी हद तक डेवलप कर रहा है, हमें एक उस भविष्य की ओर लेके जा रही है जहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होने वाला है, जो ट्रेडिशनल नौकरी है वो धीरे धीरे कम होंगी. इंडिया इज अ यंग कंट्री जहां पर ऑन एन एवरेज 35 ईयर्स से नीचे के लोगों का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है. तो ये कहाँ इम्प्लॉयड होंगे? तो अभी ही अगर ये प्रॉब्लम है तो जो हमारे आगे की जनरेशन जो आएंगी उनका भविष्य तो और प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर रोबोट्स हमारे काम कर रहे होंगे. तो वैसी जगह पे नौकरी के अलावा हम ऐसी चीजें बता सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एग्जाम्पल. तो जब हम बच्चों की बात करते हैं, अगर बच्चों में हम ये चीजें इंकल्केट कर पाए, उनमें ये चीजें विकसित कर पाए जहां पर वो एक ट्रेडिशनल नौकरी के बारे में ना सोच करके के नौकरी देने के विषय में सोच पाए, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है. और अगर इसको हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे अच्छी तरीके से तब बहुत ही अच्छा होगा. हालांकि मैं इसमें एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम भी देखता हूँ, वो ये है कि 5 लाख स्कूल्स तो हैं इंडिया में, लेकिन 5 लाख वैसे क्वालिफाइड टीचर्स जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे, जो हमें सिखाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, वैसे लोग कहाँ से आएंगे, उनको कौन ट्रेन करेगा? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमें लगता है कि ये चीजें सारी के सारी दुनिया में होनी चाहिए, सिर्फ भारत या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ही नहीं.
नीरज, आपने युवाओं की बात की तो मोदी जी ने अटल इनोवेशन मिशन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि भारत आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कमी है परंतु वाईपी यूथ प्रॉपर्टी भरी पड़ी है. आपके अनुसार युवाओं को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए?
अब जहां आप कह रहे हैं स्किल्स डेवलपमेंट, हाँ, जब जहां पर पांच, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, 5 लाख स्कूल्स हैं, 5 लाख टीचर्स तो चाहिए होंगे, उनको स्किल्स चाहिए होंगे. स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखिए तो अभी काफी सारी बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स भी हैं जो अब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं जहां पर हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा रहे हैं कि ठीक है, हम लीडर्स को लीडर्स आर बॉर्न वेनली से बट लीडर्स आर ऑल्सो मेड, थॉट लीडर्स आर मेड, तो उनको हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे. तो थॉट लीडर्स बनाने पड़ेंगे हमें. युवा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये सारे लोग एक्चुअली हो क्या रहा है, स्टार्टअप इंडिया में ग्लैमराइज किया जा रहा है. अभी आप देखिए पिछले सप्ताह शनिवार को हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री ने स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का एक इवेंट किया था जो बहुत ही बड़ा था और इंडिया में यूथ को काफी इंकरेजमेंट मिल रहा है इसके कारण. तो यूथ सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ बिजनेस ही नहीं देख रहे, वो आगे अपना भविष्य उसमें ऐसे भी देख रहे हैं कि हम कहाँ पर उस पूरे इकोसिस्टम में फिट होते हैं और कहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं.
नीरज, आपकी बातों से लगता है स्टार्टअप में जितनी संभावनाएं हैं उतने ही खतरे भी हैं, लेकिन चलते चलते बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आप किन मुख्य फील्ड्स में स्टार्टअप की गुंजाइश देखते हैं?
दो चीजों में, ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम है और ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर है, वो डेवलप्ड है. मैं ये संभावना जरूर देखता हूँ कि हम कैसे एजुकेशन को और हेल्थ केयर को इंडिया में रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेम काइंड ऑफ पॉलिसीज जो ऑस्ट्रेलिया में है. जो यूथ है वो अगर हम यूथ टू यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कर सके, हम एंटरप्रेन्योरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम कर सके जहां पर ऑस्ट्रेलिया के यूथ इंडिया में आकर के वहां के हेल्थ पॉलिसीज, वहां के एजुकेशन पॉलिसीज को यहां बता पाए, या इंडिया के लोग, इंडिया के यूथ एंटरप्रेन्योर्स ऑस्ट्रेलिया जाकर के इन सब बातों से, वहां के यूथ से मिले, वहां के गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जाने और यहां आकर के चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सके. तो वहां पर मैं बहुत बड़ी संभावना देखता हूं इन दोनों चीजों में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में.
नीरज, SBS हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.